जैसे ही आरवी ने कहा, सिंदूर चला गया मेरी आंख में। मेरी आंख चल रही है मिस्टर मेहरा। ये सुनकर अयांश की भौहें सिकुड़ गईं। वो आरवी के हाथों की तरफ देखता है जो सिंदूर से लाल हो गए थे। एक हाथ में सिंदूरदान था और दूसरे से वो अपनी आंख मसल रही थी। ये देख अयांश दांत भींचते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए बोला जिससे वो आंख मसल रही थी, आर यू मैड? जिस हाथ में सिंदूर लगा है वही हाथ आंखों में लगा रही हो, और चला जाएगा आंख में। जलन हो रही है मेरी आंख में, कहकर आरवी दूसरे हाथ की बांह से अपनी आंख मसलने लगी। तभी अयांश ने उसके हाथ से सिंदूरदान छीना और उसे ड्रेसिंग टेबल पर फेंक दिया। रुको, कहते हुए अयांश ने आरवी के दोनों हाथों को नीचे कर दिया। आरवी दोनों आंखें कसकर नीचे हुए थी। एक में तो सिंदूर गिर गया था, दूसरी उसके साथ ही बंद हो गई थी। तभी अयांश ने उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। आंख खोलो, आरवी चिढ़ते हुए बोली। जल रही है, कैसे खोलो? आरवी अपने हाथ ऊपर लाने लगी कि अयांश उस पर चिल्ला दिया, हाथ नीचे, सीधी खड़ी रहो, आंख खोलो, देखने तो दो। आंख खोलोगी तभी आंख साफ होगी ना, जो आंख में गिरा बाहर तभी आएगा जब आंख खोलोगी, अयांश ने कहा। तभी आरवी थोड़ी सी अपनी आंख खोल लेती है और फिर उसी पल बंद भी कर लेती है। ये देख अयांश ने नामे सिर हिलाया और चलो कहते हुए हाथ पकड़कर वॉशरूम में ले गया। कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? आरवी उसके साथ चलते हुए बोली। तुम्हारी आंखें खोलने, कहते हुए अयांश ने आरवी को वॉशरूम में वॉश बेसिन के सामने खड़ा कर दिया और लेफ्ट हैंड से टेप ऑन करते हुए बोला, पहले हाथ धोना आपने, फिर चेहरा। ये सुनकर आरवी ने बंद आंखों से हाथ टेप के नीचे कर दिए। ये आंख धोने का ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? पानी से निकल जाएगा सिंदूर और जलेगा भी नहीं। तभी अयांश उसे डांटते हुए बोला, सिंदूर आंखों में डालने के लिए होता है क्या? आरवी दोनों हाथ मसलते हुए बोली, जी नहीं, मांग में सजाने के लिए होता है। मैंने जानबूझकर नहीं गिराया, वो सिंदूरदान गिर गई थी। सिंदूर डाल रही थी उसमें, बंद कर रही थी उसे, तो बाल आंखों में आने लगे। बालों को उड़ाया तो सिंदूर उड़कर आंख में चला गया। आपको तो बस मौका चाहिए डांटने का मिस्टर मेहरा, हमें शौक थोड़ी है खुद को तकलीफ देने का। इतना कहकर आरवी वॉश बेसन पर झुकी और आंख धोने लगी। अयांश उसकी बात सुनकर चुप हो गया। वो हाथ में बार बार पानी भरकर आंख धो रही थी, वो उसके पास ही खड़ा था। आरवी आंख धोकर ऊपर हुई, तभी अयांश उसकी तरफ झुककर देखते हुए बोला, आर यू ओके? आरवी अयांश की तरफ मुड़ते हुए बोली, आई थिंक निकल गया, पलके झपकाते हुए। तभी अयांश ने लेफ्ट हैंड वॉश बेसिन के ऊपर लगे मिरर की तरफ बढ़ाया और उसके पास लगे हैंगर से तौलिया लिया। अपना दूसरा हाथ आरवी के सिर पर रखते हुए तौलिया वाले हैंड को आरवी के चेहरे की तरफ ले जाते हुए बोला, दिखाओ। ये सुनकर आरवी उसके चेहरे की तरफ देखती है। वो कुछ कहती कि अयांश उसके चेहरे को तौलिये से पोंछने लगा। आरवी उसे एकटक देखने लगी। अयांश को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे आरवी की कितनी फिक्र है। थोड़ी देर पहले वो उसे डांटने में लगा था और अब परवाह दिखा रहा था। तभी अयांश ने आरवी की आंख में फूका, अब जलन तो नहीं? आरवी की बोलती तो पहले ही बंद थी अयांश की हरकतें देखकर। अब उसकी फूंकने वाली हरकत से आरवी को सुबकी चढ़ गई और वो अयांश का कोट पकड़ते हुए उसी पल अपनी आंखें और होंठ खींच लेती है। ये देख अयांश हैरान हो गया। क्या हुआ, ज्यादा जल रहा है? अयांश की ये बातें सुनकर आरवी ने लंबी सी सांस ली। वो उसे भौहें से कोड़े देख रहा था। तभी आरवी ने फट से आंखें खोलकर अयांश की तरफ देखा और बोली, हम ठीक है मिस्टर मेहरा। आरवी ने इतना कहा कि उसका ध्यान अयांश के कोट पर चला गया। जहां से उसने कोट पकड़ा था वो ओ मौ कहती हुई उसी पल फट से पीछे हो गई। अयांश आरवी को अपने कोट की तरफ घूरता पाकर अपने कोट की तरफ देखता है जो कि खराब हो गया था। तभी अयांश फट से बोली, सॉरी मिस्टर मेहरा, आपका व्हाइट कोट खराब हो गया। आई थिंक मेरे हाथ अच्छे से साफ नहीं हुए थे, सिंदूर के दाग लग गए आपके कोट पर, बट मैंने जानबूझकर नहीं किया। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमने आपका कोट आपकी फूंकने वाली हरकत के चलते पकड़ा था। आपको पता है ना, आपकी ऐसी हरकतें हमें पसंद नहीं, हमें अजीब सा लगता है। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी किए की वजह से हुआ है। आप ना पास आते ना हम अपने गंदे हाथों से आपका कोट पकड़ते, फिर भी मैंने सॉरी कहा। अब आप गुस्सा नहीं कर सकते हैं, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? बोलिए ना क्या सोच रहे हैं। अगर डांटने या गुस्सा करने का प्लान बना रहे हैं तो रहने दीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तभी अयांश के आपने राइट हैंड पर नजर डाली जिसके बीच सिंदूर लगा था और अयांश के कोट की बाजू में भी सिंदूर लगा हुआ था। उसे देख अयांश ने आरवी के सिर की तरफ देखा जहां उसने थोड़ी देर पहले अपना हाथ रखा हुआ था। अब वहां सिंदूर लगा हुआ था, यानी कि आरवी की मांग में सिंदूर था। आरवी उसे हैरानी से देख रही थी। तभी अयांश ने उसकी तरफ अंगुली कर दी। क्या? आरवी भौहें उचकाते हुए बोली कि अयांश ने अपनी अंगुली मिरर की तरफ कर दी। आरवी उसकी अंगुली के इशारे से होते हुए खुद को मिरर में देखती है तो उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो अपने सिर पर लगे सिंदूर को छूते हुए बोली, ये कैसे लगा? अयांश उसके साइड में खड़ा मिरर के सामने हाथ कर देता है। आरवी मिरर से ही अयांश के हाथ की तरफ देखती है और फिर दोनों मिरर से ही एक दूसरे को देखने लगे। जब अयांश ने सिंदूरदान फेंकी थी तो उसका ढक्कन ना लगे होने के कारण फेंकते समय उसका सिंदूर अयांश के हाथ में लगने के साथ उसकी कोट की बाजू पर भी गिर गया था। अयांश ने आरवी का चेहरा पोंछते हुए अपना हाथ आरवी के सिर पर रखा तो उस वक्त उसके हाथ से आरवी के मांग में सिंदूर लग गया था। उस वक्त तो पता नहीं चला, पर अब दोनों को पता चल गया था कि कैसे हुआ ये, जिसके चलते दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अपने मांग में सिंदूर देखकर एक पल आरवी मुट्ठी बांध लेती है और फिर मुस्कुराते हुए बोली, बाय मिस्टेक लग गया, पानी से धोने से ये भी साफ हो जाएगा। ये सुनकर अयांश कुछ नहीं बोला, बल्कि समझ गया आरवी की बातों से कि उसे अपनी मांग में उसके अयांश के हाथों से लगा सिंदूर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अयांश ने हाथ में पकड़ा तौलिया वहीं फेंका और उसी पल वहां से चला गया। इधर आरवी वॉशरूम में बड़बड़ा रही थी, उधर अयांश अपने वॉशरूम में शावर के नीचे शर्टलेस दीवार से हाथ टिकाए आंखें मूंदे खड़ा था। आरवी से जबरदस्ती की शादी के पल उसके दिमाग में घूम रहे थे। तभी नो चिल्लाते हुए उसने दीवार पर जोर से मुक्का मार दिया और दांत फींचते हुए बोझा, मैं उस दिन तुम्हारी मर्जी से तुम्हारी मांग में सिंदूर भरता तो तुम आज उसे साफ करने की बात नहीं करती, कभी नापसंद नहीं करती। नापसंद की वजह भी तो मैंने दी है, मैंने। फिर एक जोरदार मुक्का दीवार पर मारते हुए। 15 दिन बाद आरवी अपने रूम में कैलेंडर के सामने खड़ी थी। हाथ में पकड़े मार्कर को बंद करते हुए बोली, 1 महीना निकल गया, अब बचे सिर्फ 5 महीने। तभी आरवी का फोन रिंग किया। आरवी ने बेड की तरफ आकर अपना फोन उठाया। संयम जी, कहती हुई आरवी कॉल रिसीव करती है। तभी आगे से आवाज आती है, हेलो डेविल वाली डॉक्टर। अरे जिया, कहकर आरवी मुस्कुराई और खिड़की पर जाकर उससे बात करने लगी। अयांश ड्राइव कर रहा था, विनित उसकी साइड वाली सीट पर बैठा था। तभी विनित अयांश की तरफ देखते हुए बोला, मिस रायचंद जैसे वर्क कर रही है हमारे साथ। अयांश, मैं तो उसे देखकर बड़ा सरप्राइज हूँ, पूरा फोकस मिस रायचंद का काम पर है। अयांश उसे टेढ़ी नजरों से देखते हुए बोला, तो तुम क्या चाहते हो, वो अपना फोकस तुम पर रखे।
ये सुनकर विनीत हंस दिया, भगवान बचाए मुझे तो शूर्पणखा से, मेरा राम बच गया, मैं तो धन्य हो गया। उसने तुम पर से अपना ध्यान हटा लिया, मैं बड़ा खुश हूँ, बचा लिया मिस रायचंद ने खुद को, वरना मेरे हाथों उसका गला कटना पक्का था। 20 दिन हो गए हमें काम करते हुए रायचंद ग्रुप्स के साथ, पर मजाल है अगर वो प्रोफेशन से हटकर कोई भी बात करे। ज्यादातर मैं, दी और तरुण जी होते हैं मिस रायचंद के साथ। वो ना तो तब तुम्हारा जिक्र करती हैं और ना ही जब तुम कभी कभार या मीटिंग्स में होते हो तब। वो हमसे तुम्हारे बारे में कभी नहीं पूछती है और तुमसे भी सिर्फ काम से रिलेटेड ही बात करती है। देखो, लड़की ने खुद को शूर्पणखा नहीं बनने दिया। ये सुनकर अयांश तिरछा मुस्कुरा दिया, अच्छा है ना, समझ गई और जो इम्पोर्टेंट है उसी पर ध्यान दे रही है। जान गई है मिस रायचंद मुझ पर ध्यान देगी तो कुछ हासिल नहीं होगा, काम पर ध्यान देगी तो बहुत कुछ पा सकती है। वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है विनीत, काफ़ी स्मार्ट है मिस्टर रायचंद और उनकी बेटी, ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करेंगी जिसके चलते उनको बिजनेस में लॉस हो। वैसे काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा चतुर हैं बाप बेटी, विनीत सोचते हुए बोला। पर जैसे ही पाया अयांश उसे घूर रहा है तो फट से बोला, चतुर नहीं, स्मार्ट, स्मार्ट है। अयांश नामे सिर हिलाता है और गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, अभी भी टाइम है, सोच लो, आज कल और परसों, रह पाओगे? क्रमशः